आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री ने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का किया शुभारंभ। प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान की शुरुआत, विशेषज्ञ पशुपालकों से करेंगे संवाद। और प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, अगले 24 घंटे में ठंड और बढ़ने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थापना के 69 साल पूरे होने के अवसर पर आज विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प को विधानसभा के पटल पर रखा। उन्होंने इस दौरान सरकार के किए गए कामों और योजनाओं के जरिए आगामी समय में किए जाने वाले कामों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया, वहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का निर्णय लिया गया। जबलपुर और ग्वालियर में भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगी। इससे पूर्व राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा परिसर में प्रदेश विधानसभा के 1956 से 2025 तक के इतिहास के पल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश विकास और सेवा के दो वर्ष विषय पर लगी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। आम लोग ये प्रदर्शनी कल से 25 दिसंबर तक देख सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया। 23 दिसंबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन वन विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के संयुक्त तत्वावधान में समृद्ध वन खुशहाल जन थीम पर किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों से प्राप्त जड़ी बूटी से औषधि बनाकर स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है। इसी क्रम में सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 8 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भोपाल के अलावा अन्य स्थानों पर भी वन मेले लगाए जाएंगे।
और आज के समय में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो योग से भी और संयोग से भी, लेकिन एक साथ समेकित रूप से सूर्य नमस्कार से लगा करके हमारी औषधि तक, हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन के जीने के साथ साथ प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाने की शैली, ये अद्भुत है। ऐसे में वेलनेस की दृष्टि से भी पहले केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे, एक साल में हमने 8 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का शासकीय स्तर पर भी निर्णय किया।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में दूर संचार ग्राहकों की संख्या सबसे अधिक है और देश में कॉल दरों में 97% की गिरावट आई है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान श्री सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2014 में जो कॉल दर 50 पैसे प्रति मिनट थी, वह 3 पैसे प्रति मिनट रह गई है। भारत टेलीकॉम 2025 और स्थानीय क्षेत्रों में BSNL नेटवर्क की पहुंच से संबंधित एक अन्य प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में भारत के निर्यात में 72% की वृद्धि हुई है।
कि पिछले 5 वर्षों में जो हमारे भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट्स की वृद्धि हुई है, जो 10,000 करोड़ का आंकड़ा 2020-21 में हुआ था, 2024-25 में हमारी निर्यात बढ़ के 18,406 करोड़ हो चुकी है। तो 72% वृद्धि हमारे निर्यात के क्षेत्र में हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के तीसरे और आखिरी पड़ाव पर ओमान के मस्कट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत और ओमान अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ और सदियों पुराने व्यक्तिगत संबंधों का जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मस्कट ओमान का 2 दिवसीय दौरा विकास के लिए मिलकर काम करने के उद्देश्य से दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरगन ने कहा है कि प्रसार भारती ने सांस्कृतिक पहुंच को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों के माध्यम से आय अर्जित करने के साथ साथ अपने सार्वजनिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए कंटेंट सिंडिकेशन नीति 2025 का मसौदा तैयार किया है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में डॉ. मुरगन ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित कार्यक्रमों, संग्रहित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रम तथा सरकारी कार्यक्रमों, त्योहारों, खेलों आदि के लाइव प्रसारण का मौद्रीकरण करना है। सड़क तथा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पारंपरिक टोल वसूली प्रणाली के स्थान पर अगले वर्ष के अंत तक पूरे देश में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली लागू कर दी जाएगी। आज प्रश्नकाल में एक उत्तर के दौरान श्री गडकरी ने कहा कि सरकार राजमार्गों पर वाहनों की दक्षता को बढ़ाने और यात्रा समय को कम करने के लिए इसे लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद लगभग 1,500 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। प्रदेश में पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने व दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पशुपालकों को पशुओं में नस्ल सुधार, पशु पोषण तथा पशु स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देंगे। केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक VBG रामजी में ग्रामीण परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इस संबंध में रायसेन जिले के ग्राम पंचायत बनगवा के सरपंच मनीष कुमरे ने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
मेरा नाम मनीष कुमरे है, मैं ग्राम पंचायत बनगवा का सरपंच हूँ। पहले सरकार द्वारा 100 दिन के रोजगार दिया जाता था, अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, जिससे लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सभी रोजगार उनको ग्राम पंचायत में ही मिलेगा, इसलिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ।
भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन संगीत समारोह के तीसरे दिन प्रातःबेला में सुदूर पश्चिमी देश इटली से आए साधक ने बांसुरी वादन से पूर्व व पाश्चात्य संगीत के मिलन की अनुपम आभा बिखेरी। वहीं ग्वालियर की सुविख्यात गायिका डॉक्टर साधना देशमुख मोहिते ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। राजधानी भोपाल सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कई जिलों में घने कोहरे की वजह से रेलगाड़ियां और हवाई यात्रा भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने आज एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत धनिया की प्रोसेसिंग के लिए और भी नई इकाइयां तथा हर्बल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले में मिशन शक्ति के अंतर्गत आज महिला और बाल विकास विभाग इटारसी द्वारा विभिन्न स्थलों पर कठपुतली शो तथा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सागर के स्थानीय खेल परिसर मैदान में आज 69वीं राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर के 350 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आज MSME निर्माण उद्योगों के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैतूल जिले में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 24 दिसंबर को शासकीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय आमला में किया जाएगा। और देवास जिले की सोनकच्छ एवं बागली उपजेल परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर बंदियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की समझाइश दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री ने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का किया शुभारंभ। प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान की शुरुआत, विशेषज्ञ पशुपालकों से करेंगे संवाद। और प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, अगले 24 घंटे में ठंड और बढ़ने की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।